ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा सोशल मीडिया नियमन का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा स्पष्ट। नेकपा एमाले के दूसरे विधान महाधिवेशन में भावी नेतृत्व पर चर्चा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कोई विकल्प न होने का समूह चर्चा का निष्कर्ष। आज रात 10:11 पर लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण। रात 1:41 पर होगा समाप्त। और गजा क्षेत्र पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से इसराइल द्वारा स्कूलों और आवासीय भवनों पर हमला तेज। कम से कम 21 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट किया कि सरकार यूट्यूब फेसबुक सहित सोशल मीडिया को नियमन करना चाहती है। ललितपुर के गोदावरी स्थित सनराइज हॉल में जारी नेकपा एमाले के दूसरे विधान महाधिवेशन के बंद सत्र में अध्यक्ष ओली ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया बंद करने के दिए गए आदेश का पालन किया है। अध्यक्ष ओली ने सरकार के राष्ट्रीय हित के प्रति अडिग रहने की बात स्पष्ट करते हुए कहा कि नेपाली जनता भूखे रहने को तैयार है, लेकिन राष्ट्रीयता पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सहन नहीं करेगी। महाधिवेशन के तीसरे दिन आज पार्टी उपाध्यक्ष और उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव और महासचिव शंकर पोखरेल द्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक रिपोर्ट पर समूह प्रस्तुतिकरण के बाद संबंधित नेताओं ने उठाए गए सवालों के जवाब दिए। एमाले पार्टी के विधान में मौजूद 2 साल के कार्यकाल और 70 वर्ष की उम्र सीमा हटाने के प्रावधान सहित विधान मसौदे को 100% प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है। ये जानकारी एमाले के उप महासचिव एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दी। विधान महाधिवेशन में विभिन्न समूह के बीच विचार विमर्श के दौरान नेताओं ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में अध्यक्ष ओली के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये जानकारी एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग के प्रमुख तथा स्थायी कमेटी सदस्य राजेंद्र गौतम ने दी। नेपाली कांग्रेस सामाजिक संजाल सूचीकृत न होने पर उन्हें बंद करने के किए गए निर्णय संबंध में सरकार के साथ विचार विमर्श करने के विचार में है। आज कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की सभापति शेरबहादुर देववा निवास बूढ़ा नीलकंठ में हुई बैठक ने ये फैसला किया। बैठक का निष्कर्ष था कि सरकार के साथ विमर्श करने के बाद पार्टी की धारणा साझा की जाएगी। ये जानकारी सह महामंत्री जीवन परियार ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भंसार संबंधी कानून को संशोधन और एकीकरण करने के लिए बने विधेयक का प्रमाणीकरण किया है। संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को नेपाल के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल ने प्रमाणीकरण किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति ने बताया है कि आज रात खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर शंभु प्रसाद ढकाल ने जानकारी दी कि आज रात 10:11 पर ग्रहण का स्पर्श, रात 11:56 पर मध्य और रात 1:41 पर ग्रहण समाप्त होगा। शास्त्रीय वचन है कि ग्रहण के समय जप, स्नान, ध्यान, पाठ आदि कर्म करने से फलदायी होता है। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले के सूतक लगने के कारण भोजन न करने का धार्मिक विश्वास है। शास्त्रीय रूप से ग्रहण में बच्चों, वृद्धों और बीमारों को छोड़कर अन्य को भोजन करना निषेध बताया गया है। ये ग्रहण नेपाल से दिखने वाला विक्रम संवत 2082 का पहला ग्रहण है। समिति ने बताया है कि इसी वर्ष आगामी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को भी खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को लगता है। व्यावसायिक और रचनात्मक प्रशासन, विकास, समृद्धि और सुशासन के नारे के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित कर आज 22वां निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। निजामती सेवा दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि निजामती कर्मचारियों को सेवाग्राहियों को केन्द्र में रखकर सरल, त्वरित और परिणाम उन्मुख सेवा प्रवाह प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री भगवती न्यौपाने ने कहा कि कर्मचारी तंत्र को सेवा उन्मुख, ईमानदार और समय की गति के साथ चलने में सक्षम बनना चाहिए। दिवस के अवसर पर सिंह दरबार में एक प्रभात फेरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो न्यू प्लाजा प्रदर्शनी मार्ग होते हुए नेपाल पुलिस क्लब पहुंची और मुख्य समारोह में परिवर्तित हुई। नेपाल में पहली बार विक्रम संवत 2013 भाद्र 22 को निजामती ऐन लागू होने के दिन की स्मृति में 2061 साल से हर साल भाद्र 22 को ये दिवस मनाना शुरू किया गया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि माओवादी केंद्र सरकार से बाहर रहकर भी जनता केंद्रित होकर काम कर रही है। मध्य पहाड़ी लोक मार्ग अभियान अंतर्गत आज लमजुंग की सुंदर बाजार नगर पालिका वार्ड नंबर 9 भोटे ओडार में आयोजित सभा में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। नेपाल की महिला सरकारी वकीलों का सम्मेलन कल से काठमांडू में शुरू होने जा रहा है। महिला सरकारी वकीलों का सशक्तिकरण, फौजदारी न्याय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण मुख्य नारे के साथ ये सम्मेलन कल से 2 दिनों तक चलेगा। सम्मेलन में सभी महिला सरकारी वकील आपस में अनुभवों का आदान प्रदान करेंगी और पेशेवर अनुभवों, चुनौतियों और अवसरों पर गहन चर्चा होगी। फिलहाल नेपाल में महिला सरकारी वकीलों की संख्या 148 है। बारा में आज फिर बाघ के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के साथ ही पिछले 2 महीनों में बारा में बाघ के हमले से मरने वालों की संख्या 4 पहुंची है। आज सुबह मशरूम लेने गए जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 के 60 वर्षीय छेवांग लामा की मौत बाघ के हमले से हो गई। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रमुख ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना ने गजा पट्टी के विभिन्न इलाकों में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी है, जिसमें स्कूलों और आवासीय भवनों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताजा हमलों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली सेना का लक्ष्य गजा के घने आबादी वाले इलाके हैं। हमलों में कई मंजिला आवासीय इमारतों, एक स्कूल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सैन्य बलों का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन हमास के सदस्यों द्वारा छिपने, हथियार जमा करने और हमले करने के लिए किया जा रहा था। उनका कहना है कि ये हमले गाजा पर इसराइल की सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। इस हमलों ने गजा में पहले से चल रहे गंभीर मानवीय संकट को और गहरा दिया है। लगातार हो रहे हमलों के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र का द्वारा संचालित स्कूलों और स्थायी शिविरों में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन हमलों पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से नागरिकों की रक्षा करने और शांति के रास्ते की तलाश करने का आग्रह किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा सोशल मीडिया नियमन का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा स्पष्ट। नेकपा एमाले के दूसरे विधान महाधिवेशन में भावी नेतृत्व पर चर्चा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कोई विकल्प न होने का समूह चर्चा का निष्कर्ष। आज रात 10:11 पर लगेगा खग्रास चंद्र ग्रहण। रात 1:41 पर होगा समाप्त और गजा क्षेत्र पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से इजरायल द्वारा स्कूलों और आवासीय भवनों पर हमला तेज, कम से कम 21 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।